हम करने जा रहे हैं इस टाइम सेक्शन 188 की समरी की। सेक्शन 188 में हमने क्या किया, सेक्शन 188 जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करता है। जब भी सेक्शन 188 की एप्लीकेशन आपको देखनी हो तो सबसे पहले देखना सेक्शन 2 क्लॉज 76 वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब अगर सेक्शन 2 क्लॉज 76 जब भी सेटिस्फाई हो जाए तो एक बात तो पक्की है कि मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है। बट सेक्शन 188 यहां पर कहता है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट बोर्ड रेजोल्यूशन की भी हो सकती है और उसके साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की भी हो सकती है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो है ही है हर जगह पर, मगर साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुछ क्लॉजेस ऐसे दिए गए हैं, वो क्लॉजेस कौन कौन से हैं देखना शुरू करते हैं, एक एक चीज पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट और द अरेंजमेंट विद अ रिलेटेड पार्टी, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट आप रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं करोगे अनलेस द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड इन द बोर्ड मीटिंग और रेजोल्यूशन एज द केस में बी हैज बीन ऑब्टेंड। जब तक आप ये ऑप्टेंड नहीं कर लोगे, ठीक है। हाँ जी पटियाला, चलिए तो ट्रांजैक्शन पहली क्या है, अगर आप सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या मटेरियल, या तो डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, किसके साथ, किसी रिलेटेड पार्टी के साथ। मतलब अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी से सेल या परचेस कर रहे हैं गुड्स या मटेरियल की, या तो खुद या फिर कोई एजेंट को इन्वॉल्व करके, तो फिर रिक्वायरमेंट आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है। मगर हाँ, अगर ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट 10% ऑफ टर्नओवर, मतलब आपकी टर्नओवर का 10%, लास्ट ऑडिटेड टर्नओवर का 10% या फिर 100 करोड़, इन दोनों में से जो भी लोअर है अगर उसको एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ में प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना ही करना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन के एडिशन में है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी। क्लियर हो गया। सेकंड, सिमिलरली अगर आप सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, या तो खुद या फिर एजेंट के थ्रू किसी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ यह ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो है ही है, मगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड हो जाएगा अगर अगर जो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है आपकी नेटवर्थ की 10% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है या फिर 100 करोड़, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, अगर इसको, इस लिमिट को वो एक्सीड कर रही है तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए अलॉन्ग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है जी। थर्ड, अगर आप लीजिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, लीजिंग मतलब लीज पे देना या लीज पे लेना, दोनों कवर है। अगर लीजिंग हो रही है प्रॉपर्टी की और लीज की वैल्यू अगर 10% ऑफ द टर्नओवर और 10% ऑफ द नेटवर्थ और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर से ज्यादा है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा। अदरवाइज हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, लीज में, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना पड़ेगा। और इससे आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कहा अगर आप अवेल कर रहे हैं, अवेलिंग और रेंडरिंग कर रहे हैं कोई सर्विसेस, किसी रिलेटेड पार्टी की सर्विसेज को आप अवेल कर रहे हैं, अगर आप अवेल कर रहे हैं डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, तो ध्यान रखना बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना पड़ेगा, मगर मगर यहां पर ध्यान रखना आपको टर्नओवर का 10%, नेटवर्थ का 10% नहीं है और अमाउंट 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से अगर ये लिमिट एक्सीड करती है तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना ही करना पड़ेगा। यहां के बाद मेरा आता है क्लॉज नंबर एफ, ये ई नहीं है, क्लॉज नंबर एफ है, क्लॉज नंबर एफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। वो कहता है कि अगर रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट किया जा रहा है किसी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर, या तो किसी कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में, अगेन अगर किसी रिलेटेड पार्टी को ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है किसी कंपनी में, किसी एसोसिएट, उस कंपनी में, उसके एसोसिएट में या उसके सब्सिडरी में, होल्डिंग कवर नहीं है, बस ध्यान रखना। चलिए, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है पहले इमीडिएटली नीचे आके देखिएगा। कोई माना जाएगा कि कोई व्यक्ति ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अगर वो डायरेक्टर होने के अलावा कंपनी से कुछ और भी लेना ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्टर होने के अलावा आप कंपनी में सेक्रेटरी पोस्ट भी खुद ही होल्ड कर रहे हो, सीएफओ पोस्ट भी खुद ही होल्ड कर रहे हो, तो फिर ये माना जाएगा कि आप ओपीपी होल्ड कर रहे हो, मतलब डायरेक्टर के अलावा कुछ भी होल्ड किया। तो सिमिलरली अगर आपकी कोई रिलेटेड पार्टी कुछ भी एनीथिंग कंपनी से ले रही है, मतलब कंपनी में कोई भी पोस्ट पे लगी, तो ये माना जाएगा ओपीपी। क्योंकि बड़ा सीधा सा सवाल ये उठता है कि भैया इस व्यक्ति को क्यों अपॉइंट किया गया कंपनी में, शायद ये डायरेक्टर का रिलेटिव था इसलिए या फिर कोई और रीजन से, तो इसका जजमेंट फाइनली बोर्ड या फिर मेंबर लेंगे, ठीक है जी। तो अगर ओपीपी की मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना तक है तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा अगर वो 2.5 लाख रुपए महीना से एक्सीड कर रही है। सिमिलरली अंडरराइटिंग कमीशन के अंदर भी अगर 1% से ज्यादा है तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा। हमने इसके आगे किया कि अगर आप पोजीशन होल्ड करते हैं ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 है जो कहता है कि ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिए अलग से बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सेक्शन 196 हम करेंगे, इसके अलावा आपको बहुत सारे क्राइटेरिया और सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। दूसरी बात, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो इसके लिए इसको फिर आपको इसे ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इनकी होती है जिसे ये सेटिस्फाई करके यहां तक पहुंचे होंगे। आगे, OPP may be without any resolution if the ratification can be within 3 months. मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपने अर्जेंट अपॉइंट करना है OPP पर, क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल टैलेंट है, आपकी नजर में है, आपकी नजर में उसके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग का वेट भी नहीं कर सकते, आप उसे अपॉइंट कर दीजिए और इस केस में बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग के अंदर उसकी रेटिफिकेशन ले लीजिए इस अपॉइंटमेंट की विदिन 3 मंथ। बट अगर बोर्ड मीटिंग या फिर जनरल मीटिंग में रेटिफिकेशन नहीं हुई, तो ध्यान रखना इस व्यक्ति की जितनी सैलरी है वो सबके लिए आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कंपनी को, यानी कि जिस व्यक्ति ने इसे अपॉइंट करवाया है उसे सारा लॉस बियर करना पड़ेगा सैलरी का। आगे, अगर बोर्ड ने रिसाइन किया तो कंसर्न डायरेक्टर टू इंडेमनीफाई द कंपनी, ठीक है जी, आइडेंटिफाई नहीं, नॉट इंडेमनीफाई द कंपनी, indemnify the company। चलिए और आगे बढ़ते हैं। Proviso to section 188 subsection 1 क्या कहती है कि requirement, no requirement if the transaction in the ordinary course at the arm length price है, यानी कि कोई भी requirement नहीं है, कोई भी requirement नहीं है board resolution वगैरह की, ordinary resolution वगैरह की, अगर कोई transaction ordinary course of the business plus arm length price के ऊपर है, दोनों condition ordinary course plus arm length price। For example, अगर मान लीजिए Reliance Industries अपने बचे खुचे computer अपने managing director मुकेश अंबानी को बेच देती है, तो बेशक arm length price पे बेचती है, but still section 188 attract होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये कंपनी का ordinary course of business नहीं है, क्योंकि दोनों condition satisfy होंगी तभी 188 1 से exemption मिलेगी, पहला ordinary course और दूसरा arm length price, ठीक है। चले, अगर आप interested हैं, रिलेटेड पार्टी हैं और मेंबर भी हैं, तो ध्यान रख लेना आप वोट नहीं करेंगे रेजोल्यूशन के ऊपर जब भी वोटिंग होगी। और अगर आप होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी से ट्रांजैक्शन कर रही है, तो फिर होली ओन सब्सिडरी में कोई सेपरेट रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, होल्डिंग कंपनी में रेजोल्यूशन पास हुआ वही इनफ माना जाएगा उसकी होली ओन सब्सिडरी के लिए भी। और यहाँ पर कुछ पेनल्टीज दी गई हैं, लिस्टेड कंपनीज में अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो इम्प्रिजनमेंट 1 साल की है, फाइन 25,000 रुपये जो कि 5,00,000 रुपये तक जा सकता है और बोध जा सकते हैं। अदर कंपनीज, अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई कंपनी है तो उसमें केवल फाइन की चर्चा होगी, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं चाहिए और मेंबर में वोट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मेंबर भी वोट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में, मेंबर भी वोट कर सकते हैं और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रहा है या फिर किसी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी का किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोवाइडेड ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री से आपने अप्रूवल ले ली है, तो फिर भी आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। चले जी, धन्यवाद, ये हमारी सेक्शन 188 की समरी थी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।